स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 4 नवंबर और दिन सोमवार। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन।
पूरी दिल्ली के लोग चाहते हैं कि ऑड इवन हो, तो विजय गोयल जी दिल्ली के लोगों के खिलाफ क्यों काम करना चाहते हैं? विजय गोयल जी दिल्ली के लोगों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? विजय गोयल जी को भी साथ देना चाहिए।
लेकिन बीजेपी क्यों है इसके खिलाफ? बीजेपी नेता विजय गोयल,
1 लाख से ऊपर टैक्सी, ओला, उबर, महिला ड्राइवर और बसेस और पता नहीं जाने जाने सबको छूट दे दी गई, तो ऑड इवन एक ड्रामा बन गई है।
श्रीनगर में ग्रेनेड हमला, 1 की मौत, 15 घायल, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं से कहा है कि राजधानी दिल्ली में लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे जहरीले स्मॉग के लिए एक दूसरे को दोष देना बंद करें। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्यों किसान अब भी पराली जला रहे हैं जिससे प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। कोर्ट ने कहा कि लोग अपने घरों तक में सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के इरादे से वाहनों के लिए ऑड इवन फार्मूला भी लागू कर दिया गया है, मगर विश्लेषक इसकी कामयाबी पर सवाल उठाते हैं क्योंकि स्मॉग और कई कारणों से पैदा होता है। भारत प्रशासित कश्मीर में सोमवार को हुए ग्रेनेड हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कम से कम 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि श्रीनगर में एक व्यस्त इलाके के बाजार में दोपहर को यह हमला हुआ। घटनास्थल पर मौजूद रहे शेख जुबैर नाम के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया,
एक धमाका हुआ तो जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए और एक बिहारी मुसलमान भाई हमारा वो शहीद हुआ, ऑन स्पॉट पे शहीद हुआ। हम तो देख रहे थे, वो खिलौना भेज रहा था।
ये थे श्रीनगर में धमाके वाली जगह मौजूद रहे एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। इराक के करबला शहर में ईरानी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की ओर से हुई फायरिंग में इनकी मौत हुई, जबकि कुछ का कहना है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई। ये प्रदर्शनकारी ईरानी वाणिज्य दूतावास में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इराक में पिछले कई हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से नाराज हैं। इनका ये भी कहना है कि ईरान उनके देश के मामलों में दखल देता है। ईरान का कहना है कि उसने यूरेनियम को और सक्रिय करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की संख्या दोगुनी कर दी है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अब उसके पास ऐसे 60 उपकरण हो गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ किए गए परमाणु समझौते से ईरान धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से पीछे हट गए थे। ईरान को नए और कड़े समझौते के लिए राजी करने के इरादे से अमेरिका ने दबाव बनाने की रणनीति के तहत उस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। लेबनान में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बेरूत और अन्य शहरों की मुख्य सड़कों को बंद कर दिया है। देश में पिछले 2 हफ्तों से प्रदर्शन जारी है जिससे देश के कई हिस्सों में कामकाज ठप है। स्थानीय मीडिया का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरों की मदद से बैरिकेड बनाए हैं। बेरूत, त्रिपोली और माबेश के ये प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि पूरा राजनीतिक तंत्र ही हटा दिया जाए। सारा नाम की एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम बहुत सारी चीज़ों की मांग कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण मांग न्यायपालिका से जुड़ी है जिसे राजनेता ही चला रहे हैं। इसे राजनीति से अलग करके स्वतंत्र करने की ज़रूरत है। हमें अपनी मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हमने उन्हें समय सीमा दी है और रास्तों को भी खोला है। ये थे लेबनान की एक प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पिछले महीने ब्रिटेन में एक कंटेनर के अंदर मृत मिले 39 प्रवासियों की पहचान के लिए वियतनाम के अधिकारी ब्रिटेन पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि सभी मरने वाले वियतनाम से थे, हालांकि उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वियतनाम के मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार अधिकारी अपने साथ डीएनए के सैंपल और कागजात लाए हैं ताकि ब्रितानी पुलिस के साथ साक्ष्यों का मिलान किया जा सके। पिछले हफ्ते इस मामले के संबंध में वियतनाम में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। آج ہے نومبر کی 4 تاریخ اور دن ہے سوموار، اور اس وقت بھارت میں شام کے 7:34 ہو رہے ہیں۔ آپ اس کارکرم کو ریڈیو کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون پر بھی لائیو سن سکتے ہیں۔ کارکرم کی شروعات دلی میں بڑھتے پردوشن سے۔ دلی والوں پر زہریلی ہوا کا قہر جاری ہے۔ دلی میں سوموار صبح یعنی آج صبح 7:30 وایو گنوتا سوچکانک یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس 439 تھا، جو گمبھیر شرینی میں آتا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس اگر 0 سے 50 کے بیچ ہو تو اچھا، 51 سے 100 کے بیچ سنتوش جنک، 101 سے 200 کے بیچ مدھیم، 201 سے 300 کے بیچ خراب، 301 سے 400 کے بیچ اتینت خراب، اور 401 سے 500 کے بیچ گمبھیر، اور 500 کے پار بے حد گمبھیر مانا جاتا ہے۔ اس پر کچھ حد تک قابو پانے کے لیے اروند کیجریوال کی دلی سرکار نے آج سے دلی میں ایک بار پھر آڈ ایون لاگو کر دیا، لیکن وپکشی بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس کا ویروت کیا ہے، اور بی جے پی نیتا وجے گوئل اپنی آڈ گاڑی لے کر آج باہر نکلے۔ ان کا حالانکہ چالان بھی کاٹا گیا۔ سنیے کیا کچھ ہوا آج دلی میں محمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔
آڈ ایون یوجنا کا مطلب ہے کہ آڈ سنکھیا والی تاریخ کو جن گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کی انتم سنکھیا 135579 ہے، کیول وہی گاڑیاں سڑکوں پر چلیں گی۔ اسی طرح ایون سنکھیا والی تاریخ کو 02468 سنکھیا والی گاڑیاں سڑکوں پر چلیں گی۔ اس یوجنا میں دوپہیا واہنوں کو چھوٹ دی گئی ہے، ساتھ ہی جو اکیلی مہیلائیں گاڑیاں چلا رہی ہیں اور جن گاڑیوں میں اسکول کی وردی پہنے بچے رہیں گے، ان نجی واہنوں کو اس میں چھوٹ ملے گی۔ یہ یوجنا صبح 8 سے رات 8 تک لاگو رہے گی۔ اس نیم کا الگھن کرنے والے پر 4,000 کا جرمانہ لگانے کا پراودھان ہے۔ اس یوجنا کے پہلے دن شام میں دلی کے اپ مکھیہ منتری منیش سسودیا نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ آج اس یوجنا کا الگھن کرنے پر 192 چالان کاٹے گئے ہیں، اور جنتا نے اس کا بہت اچھے طریقے سے پالن کیا ہے، اس کے لیے وہ تعریف کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا،
میں آپ کے مادھیم سے دلی کی جنتا کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے سمے میں جب پورا کا پورا نارتھ انڈیا پرالی کے پردوشن سے، پرالی کے دھوئے میں دم گھٹ رہا تھا پورے نارتھ انڈیا کا، ویسے میں دلی کی جنتا نے اپنے اوپر ایک سختی کر کے، ایک سخت قدم اٹھا کے، لیکن ایک بہت پازیٹو قدم اٹھا کے یہ بتایا ہے کہ جب جنتا چاہتی ہے تو بہت کچھ سمبھو ہو سکتا ہے۔
پردوشن کو لے کر شروع کی گئی اس یوجنا پر سوال بھی اٹھنے لگے۔ دلی میں وپکشی پارٹی بی جے پی نے اس کے خلاف ویروت پردرشن بھی کیا۔ بی جے پی نیتا وجے گوئل اپنا ویروت جتانے کے لیے آڈ نمبر کی گاڑی لے کر نکلے اور ان کا چالان کاٹا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دلی سرکار صرف وگیاپن اور پرچار پر پیسہ خرچ کر رہی ہے، پردوشن کم کرنے کے لیے دوسرے قدم اٹھانے چاہیے۔
میرا پہلا پرشن ہے، اگر یہ پردوشن پرالی سے ہے تو پھر آڈ ایون کا کیا فائدہ ہے؟ اور اگر یہ آڈ ایون کرنا ہے تو جس میں 70 لاکھ سکوٹر، ٹو ویلر اور 3 ویلر، 70,000، 1 لاکھ سے اوپر ٹیکسی، اولا، اوبر، مہیلا ڈرائیور اور بسز، اور پتہ نہیں جانے جانے سب کو چھوٹ دے دی گئی، تو آڈ ایون ایک ڈرامہ بن گئی ہے۔
آڈ ایون یوجنا پر راجنیتی کے بیچ دلچسپ درشیہ اس سمے دیکھنے کو ملا جب وجے گوئل کی پریس کانفرنس میں دلی کے پریوہن منتری کیلاش گہلوت پہنچ گئے۔ انہوں نے گوئل کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ آڈ ایون کے کارن پردوشن کم کرنے میں کچھ حد تک مدد ملے گی۔ وہیں دلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال نے کہا کہ اس کے کارن 15 لاکھ گاڑیاں سڑکوں پر نہیں آئیں گی، جس سے پردوشن کم کرنے میں مدد ملے گی، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے سرکار کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا، اور اس یوجنا میں دلی کی جنتا ان کے ساتھ ہے۔
15 لاکھ گاڑیاں اگر دلی کی سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تو پولوشن تو کم ہوگا نا۔ پوری دلی کے لوگ چاہتے ہیں کہ آڈ ایون ہو، تو وجے گوئل جی دلی کے لوگوں کے خلاف کیوں کام کرنا چاہتے ہیں؟ وجے گوئل جی دلی کے لوگوں کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ وجے گوئل جی کو بھی ساتھ دینا چاہیے۔ میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ساتھ دیں اس میں۔ اس میں کیوں اس کا ویروت کر رہے ہیں؟
دلی کے پردوشن اور آڈ ایون کا مدعا آج سپریم کورٹ میں بھی اٹھا۔ سپریم کورٹ نے دلی سرکار سے پوچھا کہ اس یوجنا کا کیا ارتھ ہے اور اس سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے دلی سرکار کو آدیش دیا ہے کہ وہ شکروار کو آڈ ایون سے جڑا آنکڑا اس کے سمکش رکھے۔ سپریم کورٹ جاننا چاہتا ہے کہ اس یوجنا سے کتنا پردوشن گھٹا ہے۔ محمد شاہد، بی بی سی، دلی۔
ادھر سپریم کورٹ میں بھی پردوشن کو لے کر کیندر اور دلی دونوں سرکاروں کی سپریم کورٹ نے جم کر پھٹکار لگائی ہے۔ کورٹ نے پوچھا ہے کہ وہ پردوشن کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش کے مکھیہ سچیووں کو بھی عدالت کے سامنے حاضر ہونے کے آدیش دیے ہیں۔ عدالت میں آج کیا ہوا، یہی جاننے کے لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی سچتر موہنتی سے۔
देखिए सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, लगभग दो के आसपास सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो जज की बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस अरुण मिश्रा साहब अपना डिस्प्लेजर जताए हुए ये कहा कि इट्स अ शॉकिंग स्टेट ऑफ एफआईआर, यानी कि ये बहुत शॉकिंग एफआईआर है, इस तरीके से अगर हो रहा है ये बहुत ग्रेव सिचुएशन है, ग्रीम सिचुएशन है, इस तरीके का जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सरकारें जो है केंद्र सरकार है दिल्ली सरकार है ये सब क्या कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इतने पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार की क्या जिम्मेदारी है, लोगों की लाइफ और लिबर्टी सब दांव पे है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, जो राइट टू लाइफ है वो फंडामेंटल राइट है, लोगों का अधिकार है जीना, अगर हम फंडामेंटल अधिकार को इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो सरकार है किस लिए, हमारे सरकार है सब वेलफेयर सरकार है, ये भी कहा। और रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है पराली जलाने से हो रहा है, स्टबल बर्निंग से हो रहा है, बाकी बहुत कारणों से हो रहा है, जो पराली जलाने का मामला है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्टबल बर्निंग नहीं होगा जब तक अगली सुनवाई हो जाए तब तक, और जितने सारे चीफ सेक्रेटरी है तीनों स्टेट का यानी कि पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तीनों स्टेट की चीफ सेक्रेटरी को बोला गया है कि निर्देश दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हो और अपना रिपोर्ट पेश किए कि किस तरीके से वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने में मदद कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने ये साफ जरूर कर दिया कि इसमें किसी को भी कोताही बरताया नहीं जाएगा, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे और स्टबल बर्निंग में पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई।
कोर्ट ने खुद कहा कि हर साल ऐसा होता है और हम कर क्या रहे हैं, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार कर क्या रही है, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट भी हर बार यही कहती है, क्या आज जो अदालत का रवैया था वो आपको कुछ ज्यादा सख्त दिखा, कैसा दिखा, और लगता है कि वाकई कुछ जमीन पर कार्रवाई होगी?
देखिए ऐसा लग रहा है कि जमीन पे थोड़ी बहुत कार्रवाई जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज की सुनवाई के बाद जो जो ऑफिशियल्स हैं जो कि सारे स्टेट्स की अधिकारी है उनको काम पे लगा दिया है, यानी कि जो जवाबदेही है सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो जवाबदेही है सीधे हम उन ऑफिसर से करेंगे, यानी कि सीधा जो जवाब है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर उनसे कोई कोताही बरता जाएगा तो। हम ये कहना चाहेंगे यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं स्टेट के वो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, वो सबसे अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं, तो यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो भी चीफ सेक्रेटरी है स्टेट के अगर वो अपने ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
और क्या कोई वक्त भी दिया है कि कब वो अपना रिप्लाई फाइल करें या कोई ऐसी अगली सुनवाई इस बारे में कुछ?
दिल्ली सरकार को शुक्रवार का टाइम दिया है, फ्राइडे का टाइम दिया है और बाकी जो तीन स्टेट है पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश इनको बुधवार का समय दिया है, यानी कि लगभग बुधवार को लाइकली हियरिंग हो सकती है, हालांकि मंगलवार को रात तक इसी समय 7 बजकर आसपास पता लग जाएगा कि बुधवार को सुनवाई होगी या नहीं।
तो प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी हुआ सख्त, बता रहे थे सुचित्र मोहंती।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
तो एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर के कार्यक्रम में, मैं हूं इकबाल अहमद और अब चलते हैं भारत प्रशासित कश्मीर की तरफ। श्रीनगर में हुए ग्रेनेड हमले में आज एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की श्रीनगर स्थित हमारे साथी माजिद जहांगीर से।
श्रीनगर का जो लाल चौक है वहां से कुछ ही दूरी पर हरी सिंह हाई स्ट्रीट नामी इलाका है जहां पे काफी भीड़ भाड़ रहती है। हालांकि कश्मीर बंद है, दुकानें बंद रहती हैं, सुबह के 11 बजे तक खुलती हैं दुकानें कश्मीर में। तो उस इलाके में छापरी फरोश होते हैं, उन जो अपने पटरियों पर सामान बेचते हैं और सुरक्षा बल भी वहां तैनात होते हैं। तो इस दौरान दिन के करीब 12:30-1 बजे वहां हैंड ग्रेनेड फेंका गया जिसमें जो है 15 सिविलियन घायल हो गए और उनमें से एक सिविलियन जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का बताया जाता है और जिनकी पहचान रिंकू सिंह के बतौर हुई है उनकी बाद में मौत हो गई, काफी गंभीर रूप में वो घायल हो गए थे। और अन्य 15 सिविलियन जो है उनको श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल ले जाया गया जहां दो लोगों की पुलिस ने अपने जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया उसमें कहा गया है कि दो लोगों की जो हालत है वो गंभीर है, सीरियस है। और इस हमले में 2-3 जो SSB के जवान है सीमा सुरक्षा बल तो वो भी घायल हुए हैं। तो ये पिछले 15 दिनों में इसी इलाके में दूसरा एक ग्रेनेड धमाका है और जब पिछला धमाका हुआ था तो उसमें 7 आम शहरी जख्मी हो गए थे। तो इस तरह से लगातार पिछले दिनों से, जैसे अनंतनाग में भी एक हैंड ग्रेनेड धमाका हुआ था तो उसमें भी 12-13 लोग घायल हुए थे। कुछ दिन पहले सोपोर में हुआ था तो वहां भी मेरे ख्याल से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो इन धमाकों के चलते जो है काफी पैनिक हो गया है लोगों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, क्योंकि अब सुबह जो 11-12 बजे तक दुकानें खुलती हैं तो लोग जगह जगह से आते हैं शॉपिंग करने के लिए या जरूरत की चीजें लेने के लिए। तो पुलिस ने इन हमलों के लिए चरमपंथी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है और आज भी पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि कुछ दिन पहले सोपोर में उन्होंने एक चरमपंथी को पकड़ा था और जिनको ये काम दिया गया था कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है हैंड ग्रेनेड फेंके ताकि जो दुकानें खुल रही हैं उससे मिलिटेंट जो है अनर्व हो गए हैं। और पुलिस ने ये भी अपने बयान में बताया है कि पाकिस्तान भी इससे काफी डिस्टर्ब हो गया है कि कश्मीर में एक बार फिर जो है दुकानें खुलने लगी हैं।
तो श्रीनगर से ये थे माजिद जहांगीर। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक वहां सरकार बनने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन ने हालांकि 160 से ज्यादा सीटें जीती हैं जो कि 288 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए काफी हैं। लेकिन मामला गठबंधन के ही दोनों साथियों में अटका पड़ा है। शिवसेना 50-50 फॉर्मूले की बात कर रही है तो बीजेपी कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सीधे चलते हैं मराठी, बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित से और पूछते हैं उनसे कि आशीष, आखिर महाराष्ट्र में सरकार क्यों नहीं बन पा रही है?
क्योंकि शिवसेना की यही मांग है कि उन्हें 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद चाहिए और बीजेपी ने अब तक तो ये कहा है कि वो शिवसेना को ये पद नहीं देंगे। आज जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मिले तो उसके बाद में उन्होंने इन सभी डिटेल्स पे बात करने से तो मना किया, लेकिन जिन भाजपा के नेताओं से हमारी बात हो रही है उन सभी लोगों ने यही कहा है कि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिलहाल शिवसेना और बीजेपी के बीच में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। आज देवेंद्र फडणवीस ने भी बताया और शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी बताया है कि दोनों पार्टियों में चर्चा अब तक शुरू ही नहीं हुई है।
जी, और आशीष, शरद पवार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस तरह की अटकलें लगाई जा रही कि क्या कोई वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव कोई गठजोड़, कोई गठबंधन, क्या इस तरह की कोई भी संभावना है?
एक संभावना ये हो सकती है कि शिवसेना एनसीपी सरकार बनाए और कांग्रेस उन्हें समर्थन दे। आज शरद पवार ने सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद ये ऑप्शन रूल आउट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम नज़र बनाए रखे हैं महाराष्ट्र में जो सिचुएशन अनफोल्ड हो रहा है उसके ऊपर। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना भाजपा के खिलाफ हर रोज बात कर रही है, ये भी हम देख रहे हैं। पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, क्या आप दावा पेश करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा सोनिया गांधी से कुछ दिनों के बाद मिलने वाला हूं और तब मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन फिलहाल
लेकिन आशीष, संख्या की जहां तक बात है, अगर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना आ जाएंगे तो जाहिर है वो बहुमत हासिल कर लेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या ये कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एक साथ आ सकती है? और बहुत संक्षेप में जवाब दें इसका।
देखिए, इस समय कहना मतलब अगर हम देखें तो बीजेपी को अपोज करने के लिए कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। शिवसेना और एनसीपी साथ में आ सकते हैं। कांग्रेस को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो शिवसेना वाली गवर्नमेंट को बाहर से समर्थन दे सकती है या नहीं। कांग्रेस ने रूल आउट नहीं किया है। कांग्रेस के महाराष्ट्र के सभी नेता कह रहे हैं कि हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। किसी ने भी रूल आउट नहीं किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब चलते हैं पाकिस्तान। پاکستان میں وپکش کا آزادی مارچ راجدھانی اسلام آباد میں ہے. مارچ کا آہوان دینے والے مولانا فضل الرحمان تمام وپکشی پارٹیوں کے ساتھ اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں. اس بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی اسلام آباد میں موجود بی بی سی سنواداتا خدائے نور سے.
دیکھیں اگر سے یہ وقت جو انہوں نے جمعے کو حکومت کو دیا تھا اس کا تو وقت کل ہی ختم ہوا, لیکن کل ہی مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ آج کے دن وہ حزب اختلاف کے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائے گی اور اس میں پھر یہ فیصلہ کریں گے مشترکہ طور پر کہ ان کا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے وہ کیا ہوگا. تو آج ہی جمعۃ علماء اسلام فے کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اجلاس ابھی تک جاری ہے جو کہ 1 بجے شروع ہوا تھا دوپہر کو اور اب 5-6.5 گھنٹے ہونے کو ہے. تو یہ اجلاس ابھی تک جاری ہے جس میں یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آج مولانا فضل الرحمان پلان بی کا اعلان کریں گے. کل مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ان کے پاس پلان اے بی اور سی ہے جو کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ وقت آنے پر یہ پلان بی کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد پلان سی کا اعلان کریں گے. لیکن یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پلان بی کیا ہے پلان سی کیا ہے, یہ تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک مولانا خود سٹیج پر آتے نہیں ہیں اور یہاں پر یہ اعلان نہیں کرتے.
اور اب تک جو عمران خان کی سرکار ہے اس کا کیا رویہ رہا ہے, کیا سرکار بھی اڑی ہوئی ہے یا اس میں کسی طرح کی کوئی نرمی آئی ہے؟
دیکھیں سرکار تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہے. جب سے یہ دھرنا یا یہ جو لانگ مارچ شروع ہوا ہے 27 اکتوبر سے آج تک حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو حزب اختلاف کا جو پہلا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہو جائے, حکومت مستعفی ہو کر چلی جائے. یہ مطالبہ جو ہے حکومت کی جو ٹیم ہے مذاکراتی ٹیم ہے اس کے جو سربراہ ہے پرویز خٹک جو فیڈرل منسٹر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس مطالبے کو کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے.
اسلام آباد سے یہ تھے بی بی سی اردو کے سنواداتا خدائے نور. اور اب آپ کے خطوں کا جواب دینے کا وقت.
آپ کی رائے. نمسکار, سویکار کیجیے راجیش جوشی کا اور ساتھ میں ہیں
سوریانشی
پانڈے. تو میں کافی دنوں تک انوپستھت رہا, اس کے لیے میں شروتاؤں سے کھما چاہتا ہوں. کچھ نجی کارن تھے جن سے میں یہاں نہیں آ پایا, لیکن اب میں حاضر ہوں آپ کی سیوا میں. اور چٹھیوں سے شروعات کرتے ہیں.
تو یہ پہلا خط لیتے ہیں جو پیلا پوسٹ کارڈ بھیجا ہے, یہ کومیشور کمار نے بھیجا ہے دھمتری چھتیس گڑھ سے. اور بہت ہی خوبصورت لکھائی ہے ان کی اور انہوں نے لکھائی کے ساتھ ریکھا بھی کھینچی ہے.
جی جی جی.
یہ لکھتے ہیں, اسی سال 5 اگست کو سمویدھان کی دھارا 370 اور 35A کے سماپت ہونے کے بعد صحیح سماچار کے چاروں اور دھند ہی دھند تھا اور اسی دھند کو بی بی سی نے سمجھا اور دن بھر کو 1 گھنٹے کا کیا. تو پرانی چاہت جیسے پوری ہو گئی, لیکن اب
اگلی بار انہوں نے شکایت کی ہوگی کہ پہ واپس ایک آدھے گھنٹے کا ہو گیا ہے, تو افسوس ہے. لیکن اب یتھارتھ یہی ہے کہ ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ کا کاریہ فی الحال نہیں کر سکتے, لیکن ایسی جب ایمرجنسی آتی ہے جب ہم کو اپنے شروتاؤں کو جانکاری دینی ہوتی ہے اور تٹستھ طریقے سے, تو کاریہ کا سمے بڑھایا گیا. لیکن آپ سہیوگ بنائے رکھیں گے ایسی امید ہے.
آگے آپ کا اور میرا نام نا اس میں ملا ہوا ہے, دیکھیے راجیش نام لکھا ہوا ہے, کمار اور پھر پانڈے.
کیا کہتے ہیں
اور یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے دوارا پرستت کیا جانے والا دنیا جہاں کاریکرم بہت ہی گیان وردھک ایوم روچک ہے. سنیکت راشٹر سنگھ پر پیش کیا گیا دنیا جہاں بہت اچھا لگا. کرپا کر کے منگولیا پر بھی دنیا جہاں بنائے. میں نے دیکھا ہے کہ منگولیا سے آپ کی کوئی رپورٹنگ نہیں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, منگولیا کی راجنیتی اور وہاں کے سماج پر ہم اکثر رپورٹیں نہیں کر پاتے ہیں, لیکن جب کچھ وہاں سماجک اتھل پتھل یا راجنیتک خبر ہوتی ہے تو اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کا سجھاؤ بہت اچھا ہے, دنیا جہان میں ہم کوشش کریں گے کہ اس وشے کو سمیٹا جائے.
اور یہاں پر ایک شروتا وہ بے حد ناراض ہیں, وہ ان کا نام ہے اشوک کمار ٹھاکر اور یہ
پرانے شروتا ہیں, تو ہمارے یہ کیوں ناراض ہیں ہم سے؟
یہ ناراض اس لیے ہیں, دربھنگا سے لکھتے ہیں بہار سے اور کہہ رہے ہیں کہ سندھیا کالین سبھا میں پرسارت کاریکرم پتروں کا اتر جواب میں ہمارا نام غلط اچارن کیا گیا.
او اچھا, کیا کیا کہہ دیا ہم لوگوں نے؟
اشوک کمار کی جگہ امت کمار ٹھاکر.
بالکل بالکل, یہ تو بہت ہی غلط بات ہے اور ہم اس کو یہ جو مانا اسے غلطی ہوتی ہے اسی کا ادھارن ہے, کوئی اس میں جان بوجھ کے ایسا کیا گیا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن لکھتے رہیے گا.
اور آگے بڑھے तो अब ईमेल्स पर नज़र डालते हैं और सबसे पहला ईमेल श्रीनगर से आया है रियाद अहमद का, और ये कह रहे हैं कि ये दो बातों के बारे में काफ़ी डिटेल में उन्होंने लिखा है।
मुझे, मैंने जब ये पढ़ी है चिट्ठी, इसमें ये कह रहे हैं कि अगली बार उम्मीद है कि मैं ईमेल से आपको भेजूंगा, क्योंकि इनको उम्मीद है कि तब तक इंटरनेट वहाँ रिस्टोर हो जाएगा और ये सब नॉर्मली काम करने लगेंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने अब प्रिंट आउट लेकर के हमें खत बाई पोस्ट भेजा है।
तो एक तरह से दिख ईमेल जैसा रहा है लेकिन है ये खत। तो इन्होंने लिखा है कि आपने एक रिपोर्ट की थी जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल्स पर।
बकरवाल, जी हाँ, हाँ, जी हाँ।
उन्होंने कहा कि बीबीसी हिंदी की ये रिपोर्ट इस कम्युनिटी के बारे में बिल्कुल बेसलेस है और सही तरह से पेश नहीं की गई, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे रिविजिट करें और इस इशू पर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का उनसे भेदभाव नहीं होता है और मुझे लगता है कि बीबीसी को इस पर ध्यान देना चाहिए।
चाहिए रियाज अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर से ये चिट्ठी भेजी है हमको, और बीबीसी हिंदी के रेडियो कार्यक्रम आप सुनते रहे हैं। दुनिया को देखने का नज़रिया हर इंसान का अलग अलग होता है, लेकिन जो एक रिपोर्टर जाता है उसका अपना कोई नज़रिया नहीं होता है, वो सिर्फ वही बात रखता है जो उसको इंटरव्यू जिससे कर रहा है वो बताता है। यानी अगर गुजर समुदाय के लोगों से या बकरवाल समुदाय के लोगों से हमारे रिपोर्टर ने बात की है, जो उन्होंने कहा उसी को हमने प्रस्तुत किया, तो आपके नज़रिए से या मेरे नज़रिए से देखने का सवाल नहीं होता है। ज़मीन पर जो स्थिति है उसको रिपोर्टर ने जस का तस प्रस्तुत कर दिया, लेकिन आपकी ये राय जो है ये हमारे सरमाथे है हमेशा की तरह, और सुझाव आप आगे भी देते रहिएगा। सूर्यांशी, समय बहुत कम है, इसलिए अब आखिरी खत या आखिरी ईमेल आप पढ़ डालें।
तो ये आखिरी ईमेल पहली बार लिखा गया है, और ये मेल लिखा है कैलाश कुमार ने, गांव जैसावास, जिला जालोर, राजस्थान से, और ये कह रहे हैं कि मैं पहली बार खत लिख रहा हूँ। मैं रेहान फजल साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि वे विवेचना बहुत अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, उनकी आवाज़ मुझे बेहद पसंद है।
बिल्कुल कैलाश जी, आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं, बीबीसी के कब से श्रोता हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल चलते चलते पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। क्रिकेट में बांग्लादेश की टीम भारत T20 और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आई हुई है, तो वहीं महिला क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज में वेस्टइंडीज महिला टीम से ODI सीरीज और T20 सीरीज खेलने के लिए पहुंची हुई है। फिलहाल वेस्टइंडीज महिला टीम के साथ भारतीय महिला टीम की ODI सीरीज चल रही है, जिसमें से अभी दो मुकाबले हो चुके हैं, और दोनों मुकाबलों में एक मुकाबला वेस्टइंडीज ने एक रन से जीता, तो वहीं दूसरा मुकाबला भारतीय महिला टीम ने 53 रनों से जीता, और अब तीसरा ODI मुकाबला 6 नवंबर को खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला कल खेला गया था। और टेनिस के कोर्ट पर आपको लेकर जाएं तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार पेरिस मास्टर्स खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में 6ठी बार फाइनल में खेल रहे दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कनाडा के डेनिस शपोवालोव को 6-3, 6-4 से हरा दिया। यह मैच करीब 1 घंटे तक चला। और ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले बार्टी ने WTA फाइनल्स जीत लिया। इस जीत से टॉप सीड बार्टी को 33.5 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली है। ये टेनिस इतिहास में महिला सिंगल्स चैंपियन को मिलने वाली सबसे बड़ी प्राइज मनी है। तो वहीं फॉर्मूला 1 रेस में लुइस हैमिल्टन ने अमरीकी ग्रांड प्री में मर्सिडीज टीम के अपने साथी वाल्टेरी बोटास को पीछे करते हुए 6ठी बार फॉर्मूला 1 विश्व खिताब जीत लिया। ब्रिटेन के 34 साल के हैमिल्टन ने ग्रिड पर 5वें, जबकि फिनलैंड के बोटास ने पहले स्थान से शुरुआत की थी। रविवार को खेले गए इस मुकाबले को जीतकर हैमिल्टन ने 150वीं बार पोडियम पर जगह बनाई है, जबकि लगातार 31वीं बार अंक हासिल करने में सफल रहे हैं।
और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं से कहा है कि राजधानी दिल्ली में लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे जहरीले स्मॉग के लिए एक दूसरे को दोष देना बंद करें। भारत प्रशासित कश्मीर में सोमवार को हुए ग्रेनेड हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कम से कम 10 अन्य घायल हो गए। इराक के करबला शहर में ईरानी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। ईरान का कहना है कि उसने यूरेनियम को और सक्रिय करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की संख्या दोगुनी कर दी है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अब उसके पास ऐसे 60 उपकरण हो गए हैं। लेबनान में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बेरूत और अन्य शहरों की मुख्य सड़कों को बंद कर दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।